महाभारत में एक प्रसंग आता है युद्ध का, जब अंत होने वाला था उस समय दुर्योधन और भीम इन दोनों का आपस में गदा युद्ध हुआ और भीम ने अपनी गदा दुर्योधन की जंघा में मारी जिसके कारण वो गिर पड़ा, घायल हो गया और उसकी हालत मरणासन्न हो गई। जब श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि अब इसकी मौत होने वाली है तब उन्होंने पांडवों से कहा चलो इसके पास चलते हैं। इसके पास पहुंचे तो अंत समय का नजदीक था। कृष्ण को देखकर उसकी बुद्धि जो दुर्बुद्धि में बदल गई थी, विचार के अंदर सद्बुद्धि वाला वापस आ गया। अंदर से उसके अंदर पछतावा था, जो कुछ भी गलती की थी उसने, और अपने दोष को कृष्ण के आगे एक्सेप्ट भी करना चाहता। उसने कृष्ण के आगे कहा कि वासुदेव, मैं जानता था कि मैं गलती कर रहा हूं, परंतु फिर भी ना जाने मेरे अंदर कौन सा देव बैठा था कि वो मुझको लगातार गलती करने पर मजबूर करता और मैं गलती करता। अर्जुन जो कृष्ण के पास खड़ा था, उस अर्जुन ने भी कृष्ण से प्रश्न किया, वासुदेव, मनुष्य गलती करना चाहता नहीं, पाप करना चाहता नहीं, परंतु ऐसी कौन सी चीज है जो उसको पाप करने के लिए मजबूर कर दे। ये हम लोगों की भी हालत होती है, समाज में आम देखने को मिलती है। तो वो कहते हैं तीसरे अध्याय में, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवः महाशना महापापमा विद्धि एनम यह वैरिण। यह काम है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। काम अर्थात हम कामना करके कहते हैं, इच्छा करके कहते हैं। कहते हैं ये काम ही जो है वो उसको मजबूर करता है। और काम कैसा होता है, वो महाशना महापापमा विद्धि एनम यह वैरिण। ये कैसा है कि भोगों से कभी भी तृप्त ना होने वाला, अर्थात इसकी भूख कभी समाप्त होती नहीं, इसी को महाशनह कहा। महापाप यही मनुष्य को पाप करने के लिए मजबूर कर देता है। विद्धि एनम यह वैरिणम, इसी को तू वैरी जान। अर्थात बड़े सरल शब्दों में कृष्ण कह रहे हैं, ये जो वासना तेरे अंदर है, ये जो इच्छा तेरे अंदर है, ये जो काम है तेरे अंदर, ये तुझको गलती करने के लिए मजबूर कर देता है। और साथ में कह रहे हैं काम एश क्रोध एश, क्रोध भी यही है। आपकी कामना पूरी ना हो, घर में कोई बात ना माने, आपके अंदर क्रोध आ जाता है, मन के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाता है, वही काम क्रोध में बदल जाता है। इसलिए कोई अलग से चीज नहीं है क्रोध, काम की पूर्ति ना होना ही क्रोध है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि काम एश क्रोध एश, ये काम भी यही है, क्रोध भी यही है, जो तुझको पाप करने के लिए मजबूर कर देता है। और क्या करता है, आवर्तम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्य वैरिणः, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अन्नलेन च। कहते हैं कि आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्य वैरी, ये ज्ञानियों का वैरी है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान है, जो बुद्धिमान लोग हैं उनका ये वैरी है। क्यों ये, क्योंकि ये ज्ञान को ढक लेता है, कौरव और पांडव आप सब जानते हैं, ऋषि पितामह उनके बीच में है, युधिष्ठिर उनके बीच में है, बड़े बड़े विद्वान उनके बीच में है, लेकिन फिर भी जुआ क्यों खेले। यहां तक कि पांडव अपनी पत्नी को भी हार गए। एक साधारण व्यक्ति भी ऐसी गलती नहीं करे। हुआ क्या, इतने बड़े ज्ञानी युधिष्ठिर को धर्मात्मा कहा जाता है, लेकिन क्या हो गया उसकी बुद्धि? तो वही कह रहे हैं कि आवर्तम ज्ञानम एतेन ज्ञानिना नित्य रहेगा। ये ज्ञानी की बुद्धि को भी ढक लेता है। वासना जो जोर मारती है तो माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चे के मुंह में आके गलती कर जाते हैं। अपना ही बच्चा दूसरी जगह गलती करके आया है, किसी को पीट के आया है, लेकिन मुंह में आके बच्चे की गलती हम नहीं मानते, दूसरे की गलती सिद्ध करते रहे। साधारण रूप में ये बातें होती रहती है। इसीलिए यही हमको पाप करने के लिए प्रेरित करता है, यही हमसे गलतियां करवाता है। तो कह रहे हैं कि काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन चा। ये अधिक कष्ट तो सो ये वासना पूरी होती है, कोई भी कामना उठी कितने कष्ट झेलते हो, कितना पैसा इकट्ठा उसके लिए करते हो, कितने साधन इकट्ठे करते हो, तब जाके कामना पूर्ति होती है। तो बड़ी मुश्किल से तो ये पूर्ण होती है, और फिर भी क्या होता है, अनलेन, अनल अग्नि को भी कहते हैं। जैसे अग्नि में कितना भी ईंधन डाल दो, अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, वो प्रज्वलित होती ही रहती है। उसी प्रकार ये जो भोगों से तृप्ति हम चाहते हैं मन की, ये तृप्ति नहीं होती, बल्कि ये और प्रज्वलित हो जाती है और तेज हो जाती है। इसलिए माताएं जो बच्चों की इच्छा पूरी करने में अपना सौभाग्य समझती हैं, पैसा ईश्वर ने दिया है, तो हम देखते हैं कि बच्चे कैसे बिगड़ जाते हैं, कितने चंचल प्रकृति को जाते हैं, जिनकी कामनाएं बड़ा लगातार पूरी होती रहती, और आगे चलते कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। इसीलिए ये हमारा वैरी है, इसलिए ये ना सोचे कि प्रभु ने मुझे संपत्ति दी है, साधन दिए हैं, जितने चाहे भोग बढ़ाता रहूं, जितने चाहे भोग भोगता रहूं। याद रखिए, ये मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ते। यदि पैसा और ये सांसारिक विद्या से मनुष्य की बुद्धि होश में आ जाती तो कितने कितने बड़े देश हैं, कितने बुद्धिमान देश आप जिसको समझते हैं, यूएसए देख लीजिए, पूरी वर्ल्ड में कितने युद्ध कराए हुए अपने स्वास्थ्य में, क्या पॉलिसीज होती है इन लोगों। अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन युद्ध किसके कहां चल रहा है, इसकी बैकग्राउंड में अमेरिका ही है। इसने क्या किया, यूरोप के जितने देश थे अपने गुट में शामिल करने के लिए उसने कोशिश की, यूक्रेन को भी उसने कहा तुम मेरे गुट में शामिल हो जाओ, और वो राजी हो गए। रशिया अकेला, ये सारे राष्ट्र एक तरफ, वो कैसे सहन कर लेता, उसने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। अब बताइए, वासना किसी और की भुगत रहा है कोई और, कौन सा विकास करोगे आप? जो विकास आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है वो विकास करने योग्य है क्या? तो कृष्ण यही बात समझा रहे हैं। उसी के कारण दुर्योधन बर्बाद हुआ, उसी के कारण जो है जो कौरवों के बाकी साथी थे वो बर्बाद हुए, उसी के कारण ये महाभारत हुआ, कितना सर्वनाश हुआ। इसके पीछे एक ही चीज थी, वासना, काम, कामना। इसलिए देखो वाणी क्या कह रही है, जेती संपत पाविए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश। अब ये तो ईश्वर बोलकर बता रहा है कि इस प्रकृति में ये कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है। तो हम जो विकास समझते हैं और बच्चों के लिए विकास सोचते हैं, वो यही है जो आज दुनिया में चल रहा है, जिसके कारण इतने इतने बड़े युद्ध हो रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके पास तो जमीन कम है, भारत के पास, चाइना के पास कितनी जमीन है, भारत से कई गुनी जमीन है उसके पास, लेकिन उसकी प्यासी पूरी नहीं होती। जितनी लद्दाख की जमीन ऑलरेडी हड़प चुका वो, लेकिन अभी भी प्यास पूरी नहीं होती। कभी कहीं आक्रमण कर देता है, कभी कहीं जमीन दबाने की कोशिश करता है। अब बताइए, ये पहचान है भाई, ये प्रूफ है कि वासना पूरी करने से बढ़ती है, वो गहरी हो जाती है। इसलिए सिद्धांत ये है, वो वाणी में आ रहा है जो प्रभु डिक्लेयर कर रहे हैं खुद। ये वाणी तो प्रभु की सीधी आवाज होती है, इसको कोई धरती पर चैलेंज नहीं कर सकता। इसको भी हमने ये नहीं समझा, इसीलिए सत्संग की जरूरत होती है कि प्रभु क्या कह रहे हैं, उनका निर्णय क्या है, जो सर्वोच्च निर्णय होना चाहिए मेरे जीवन का, वहां से तो मैं सीखूं, वहां तो मैं सुनने की समझने की पढ़ने की कोशिश ही नहीं करता। तो ईश्वर का निर्णय क्या है कि जेती संपत पाविए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश। ये वो दिन आने वाले हैं जो आप आंख बंद करके विकास करते हैं। इसलिए रास्ता तो दूसरा ही, हम जो जीवन जीते हैं उसके लिए तो साफ साफ है कि आशा माही जन्मया, आशा में मर जाए मंगत घने कलेश में, नित प्यासा रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी ये दशा होती है, ये शास्त्र हमको डिक्लेयर कर रहा है, हमारी आंखें खोल रहा है। किसी प्रकार हम जो है कामना के पॉइजन से, कामना के जहर से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, ना कि इसको बढ़ाने की कोशिश करें। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमी सादा जीवन जिसका, तिसका मन प्रसन्न, मंगत साधन जो करे पाए अमोलक धन। देखिए ये गुरु गाइड करता है, हम लोग सब मिलकर वासना के पीछे पड़े हुए हैं, और गुरु क्या कह रहा है, गुरु जानता है कि ये कहां पहुंचेंगे, कितनी बेमौत मारे जाएंगे, कितनी बेचैनी लेकर ये जिएंगे, और कितने पाप करके यहां से विदा होंगे, अगले जन्म में भी उसको भोगना पड़ेगा। तो जहर की कमाई कर रहे हैं और जहर का वेलकम भी कर रहे हैं और उसका शौक पाल रहे हैं, खुशी नहीं मिलती। पढ़ाई लिखाई का मतलब यह है कि जितनी हाईएस्ट डिग्री मिल जाए, यदि हाईएस्ट डिग्री मिलने से मनुष्य को चैन मिल जाता तो इतने युद्ध क्यों होते संसार के। अमेरिका में लोगों के पास डिग्रियों की कमी है, लेकिन बुद्धि कहां मारी गई है, सबके ऊपर सबके पास छूट है, कोई चाहे बंदूक खरीद ले अपने पास रख। स्कूल के लड़के हैं लड़कों को मार देते हैं बंदूक से, आपका कोई बड़ा समझदार देश है, ऐसा हम तो नहीं कर सकते, हमारे भारत में तो नहीं होता। लेकिन ध्यान रखिए, पढ़े लिखों का देश है, हम अपने बच्चों को बड़े फक्र के साथ वहां भेजना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति जो ऋषियों की संस्कृति है उससे उनको अलग करना चाहते हैं। तो हमारी बुद्धि सांसारिक बुद्धि है, भोग विलास वाली बुद्धि है, इसमें काम कूट कूट के भरा हुआ है और बढ़ता चला जा रहा है। याद रखिए, आपका आधुनिक विकास आपके घर को, आपको, आपके देश को कहां पहुंचाएगा, आप खुद कल्पना कर सकते। इसलिए ज्यादा पैसा स्वागत की चीज नहीं है। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये थी अर्थनीति हमारे गृहस्थ जीवन, इसमें प्रभु याद आते, प्रभु की भक्ति होती है। पाप दिखाई पड़ता था, आज तो पाप करके दिखाई नहीं पड़ता। आप पॉलिटिक्स के देखते होंगे, टीवी पे देखते होंगे डिस्कशन कैसे होता है, कोई अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करता, खुलेआम गलती करते हैं, उसके वीडियो भी मौजूद हैं, तब भी कहते हैं हमने गलती नहीं करी, आपने गलत समझ लिया। क्या वक्त आ गया, हम भी अपने बचपन को जानते हैं, जवानी को भी जानते हैं, ऐसा तो हिंदुस्तान नहीं था जैसा अब हो गया, लेकिन हम कहते हैं विकास हो गया, मनुष्य का पतन हो गया, देश का विकास हो गया, ये कैसे हो सकता है। विकास दिखाई पड़ रहा है, वास्तव में हमारा पतन हुआ है, हर फील्ड में पतन हुआ, क्योंकि सारा विकास मनुष्य के लिए है ना,
यदि इस विकास में मनुष्य का पतन कर गया तो देश का पतन हुआ या उत्थान हुआ? क्या चिकनी सड़कें देखकर आप कहोगे मेरे देश का विकास हुआ? देश का विकास उसके देशवासियों से होता है। देशवासियों का चरित्र नीचे जा रहा है तो देश कैसे विकास विकसित हो सकता है? जो ये राष्ट्र पूरे विश्व में विकसित हुआ है, याद रखिए, उसने पूरी दुनिया में विध्वंस मचाया है। सारा इतिहास उठा के देख लिया, पूरे विश्व का इतिहास उठा के देख लिया, और आज भी जिनके पास पैसा बढ़ रहा है वो यही सोच रहे हैं, यही कर रहे हैं। चाइना सपने देख रहा है कि अमेरिका मुझसे नीचे रह जाएगा, मैं फिर जहां चाहूंगा अपनी धाक जमाऊंगा, इस देश को अपने कब्जे में करूंगा, करना है वो। याद रखिए, ऐसे ही ये प्रभु की वाणी नहीं आती है, जेती संपत पावीए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश। क्योंकि ये वासना कहां पलती है, इसकी तरंग कहां उठती है? ये मन में उठती है। तो आज का विषय है मन, बुद्धि और ईश्वर, इनका संबंध है क्या? मैं तो तन को ही देखता हूं, तन ही अपना स्वरूप समझता हूं, मन को तो भूल ही जाता हूं। देखिए, सब कुछ तो मेरे लिए मन है, शरीर से इच्छा कौन से पूरी करते हैं? मन में संकल्प उठता है किसी भी इच्छा का, कुछ खाने का, कुछ पीने का, कहीं घूमने का, मन में संकल्प उठता है ना, वो आपको, वो आपकी कामना बन जाती है, वो आपकी इच्छा बन जाती है, इसको पूरी करूंगा मुझे सुख मिलेगा। तो इस तन का, मन के अंदर उठी इच्छा का या मन के अंदर उठे संकल्प की पूर्ति के लिए इस इक्विपमेंट रूपी शरीर का प्रयोग करते हो, उपयोग करते हो। तो शरीर तो हम मन का गुलाम हुआ नहीं, ये शरीर जो मन की इच्छा पूरी करे मन का गुलाम हुआ नहीं हुआ। इस गुलाम को मैं अपना स्वरूप समझता, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा स्वरूप है, मन पे तो ध्यान ही नहीं है मेरा, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता। तो वासना का संकल्प कहां होता है? मन के अंदर। भोग जो भोग लेते हो आप, कोई बढ़िया चीज खा ली आपने, मान लिया आपने गुलाब जामुन ही खा लिया, बड़ा अच्छा लग गया, याद आएगा नहीं आएगा? फिर लाओ उसको, फिर खाएंगे, और यदि बार बार खाया फिर उसकी आदत ही बन जाएगी, और हो सकता है आदत ऐसी बन जाए कि वही आपके अंदर शुगर पैदा करना, और शुगर के पेशेंट बन जाओ। मन का संकल्प उठाता, संकल्प ही तो था, आपने उसका कोई एनालिसिस नहीं किया, इस संकल्प का पीछा करके मेरी जिंदगी कहां पहुंचेगी, और इस बात पर ध्यान देता है। और संकल्पों का सागर है मन, याद रखिए, संकल्पों का सागर ऐसा सागर है कि आप सो जाते हो फिर भी मन के अंदर संकल्प उदय होते हैं और वो अपना संसार खुद ही खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि विज्ञान है ये, मानव जीवन का ही विज्ञान है। जैसी मन की कामना ऐसे रूप समाए, ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है। जिस कामना को लेकर आप ये देह त्याग करते हो उसी कामना की पूर्ति के लिए नया शरीर पैदा होता है आपका, वो कामना जरूर पूर्ण होती है अगले जन्म। जिस वासना को लेकर यहां से जा रहे हो, जिस प्यास को लेकर जा रहे हो, लेकिन जो आदतें आपने यहां बनाई है खूब भोग उल्लास किया है, इसकी आदत तो बन गई आपकी, लेकिन अगले जन्म में ये गायब मिलेगा, ये तड़पाएगा फिर आप। आज का भोग विलास अगले जन्म में, फ्यूचर में मुझे तड़पाएगा, और जिसके लिए आज तड़प रहा हूं वो अगले जन्म में पूर्ण हो जाएगा। ये तो पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये तो ईश्वर का बनाया सिद्धांत। क्यों बनाया उसने ये? उसने इसलिए बनाया कि मनुष्य को ये पता लग जाए कि हर जन्म मनुष्य का दुख रूप होता है। मनुष्य को ये पता लग जाए कि हर जन्म मनुष्य का दुख रूप ही होता है, और हम में से कोई भी यदि इसका ठीक ठीक अपने जीवन से ही एनालिसिस करना चाहे, तो जब से उसको अपना होश है तब से जरा विचार करके देख ले कि एक एक वर्ष मेरा कैसा कटा है, एक एक वर्ष मेरा कैसा कटा, सब पता लग जाएगा। ये मानुष जन्म घाटे का सौदा है, यहां चैन कम मिलता है, बेचैनी ज्यादा मिलती है, सत्य यही। सुखिया कोई ना देखया, जो आया इस संसार जो देखा सो दुखिया, नित दुखता करे विचार। देखो वाणी बोले ईश्वर तो कम से कम मिस्टेक नहीं करेगा, ईश्वर को तो आपको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो देता ही देता है। ये धरती उसने दी, आकाश उसने दिया, पवन उसने दी, जल उसने दिया, वायु उसने दी, जिसके आधार पर आपका शरीर चल रहा है, वो तो केवल देता ही देता है। तो वो वाणी के द्वारा आपको चेतावनी दे रहा है कि तूने जो वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट कर ली है, जीने का तरीका तूने जो सिलेक्ट कर लिया है, ये जीने का तरीका नहीं है, ये बर्बाद होने का तरीका है, याद रख। इसलिए सत्संग के बिना तेरी जिंदगी कभी भी सुधर नहीं सकती। सत्संगी कौन सा, जो सत्पुरुषों की सीधी सीधी बात है। आज के घोर कलयुग में ये वाणी क्यों आई थी, अभी आप उच्चारण कर रहे थे, बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन सो कोई। ये ईश्वर मेरे बारे में कह रहा है, लिखकर दे रहा है, बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन सो कोई। जो पांच ज्ञान इंद्रियों के भोग में भोगता हूं, वो पांच ज्ञान इंद्रिया पशु के पास भी, एक कुत्ते के पास भी, तो पांचों ज्ञान इंद्रियों के जैसा अपना सुख भोगता है, मैं भी भोगता हूं। तो अंतर क्या है, अंतर यह है कि वो अपनी स्थिति को बदल नहीं सकता, वो मजबूर है, कि भगवान ने उसको बुद्धि दे रखी है, शास्त्र बुद्धि के ज्ञान के लिए है, ताकि वो मन को कंट्रोल कर सके बुद्धि। और मेरी बुद्धि ऐसी जो मन से हार जाती है, मैं मजबूर हो जाता हूं, मैं क्या करूं, इच्छा मुझे तड़पा रही है, मुझे पूरी करनी ही पड़ेगी, यहां तक कि मैं सुसाइड तक कर लेता हूं, इच्छा पूरी नहीं। तो ये मेरी बुद्धि की हालत है, ये मेरे देश के लोगों की बुद्धि की हालत है, कि अपने लोगों को रिश्वत ले लेके परेशान करते हैं, अपने लोगों को धोखा देते हैं, और कोई सुखी नजर भी आ जाए उसको देख के ईर्ष्या करते हैं। अरे तुमको सुखी जीवन अच्छा लगता है तो दूसरे के सुख को देख के खुश होना चाहिए, तुम तो दुखी हो जाते हो, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है, इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं। दूसरों को मान सम्मान मिल जाए तो उसको देख के जलते हो, मुझे कोई नहीं पूछता। तो मेरी दृष्टि तो देखो, मैं मानव हूं, प्रभु मेरे अंदर निवास कर रहे हैं, मैं वो मानव हूं जिसके हृदय में प्रभु खुद निवास करता है। क्योंकि भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अहम आत्मा गुडाकेश, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं, रत देश है अर्जुन तिष्ठति, तेरे हृदय में निवास करता हूं। कृष्ण क्या गलत बोल रहे हैं, मैं इस विज्ञान को समझता नहीं, ना समझने की कोशिश करता, लेकिन बड़े काम की बात है। गीता लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझता शायद ही कोई, मैं तो ये कहूंगा लाखों में से कोई एक समझता हो, पढ़ने वाले लाखों में से कोई एक व्यक्ति गीता को समझता हो। वेद व्यास ने गीता लिख दी, कृष्ण का ने जो कुछ कहा अर्जुन को वो लिख दिया उन्होंने गीता के रूप में, लेकिन मैं इसको समझने कब कोशिश करता हूं, या समझने की जरूरत समझता हूं, समझने की जरूरत भी तो नहीं समझता मैं, ये तो सीख लूं मैं। तो आगे वो कह रहे हैं कि भाई ये जो मन और बुद्धि है, ये जब बिगड़ गई, मेरे निश्चय ही गलत हो गए, जैसे दुर्योधन की बुद्धि बिगड़ी, और अर्जुन क्योंकि बुद्धिमान है इसलिए वो इस चीज को समझता है, वो जागरूक इंसान है, इसलिए कृष्ण से पूछता है कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता परंतु फिर भी पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है, तो वो कौन सी चीज है जो उसको पाप करने के लिए मजबूर कर देती है। वो कह रहे हैं कामना, काम, इसका मतलब ये हो गया कि मन और बुद्धि को शुद्ध रखना तो मेरा प्राइम ड्यूटी है ना, कि मन के अंदर जो संकल्प उठेंगे और बुद्धि उसका निर्णय देगी, जैसे चोर है चोरी करता है ना, मन में संकल्प उठता है इसका पैसा मुझे मिल जाएगा, मुझे सुख मिल जाएगा, तो बुद्धि निर्णय देती है चुरा ले, और चोरी कर लेता है। और हम लोग क्या समझते हैं, इसने गलती की है। हम जब खुद रिश्वत लेते हैं तो शांत रहते हैं, उसको चोरी नहीं समझते, उस समय मन बुद्धि की हालत हमको याद नहीं आती कि मेरी बुद्धि की क्या दशा है, ये कहां ले जाएगी मुझे, इसमें कौन से संस्कार मैं बना रहा हूं, तो जो आप पूर्व जन्म में करके आए हो वो सारे संस्कार आपके मन में सुरक्षित रहते हैं। मन सूक्ष्म चीज है, ये मरती नहीं है। बुद्धि भी सूक्ष्म है, बुद्धि के अंदर स्वभाव होता है। स्वभाव तीन तरह के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुणी पापी बुद्धि होती है, जिसकी बुद्धि के पापी निर्णय होते हैं, गलत निर्णय होते हैं। रजोगुणी बुद्धि वो है जो पैसे के चक्कर में, सुख भोग के चक्कर में बेईमानी करनी शुरू कर देती है, निर्णय दे देती है, हाँ भाई गवर्नमेंट का टैक्स मत दो, जो किसी का अधिकार बनता है वो मत दो, भोग विलास बढ़ा लो, बेईमानी करने को मिलती है कर लो, ये रजोगुण का प्रभाव। लेकिन तीसरा भी तो है बुद्धि की, सतोगुण। सतोगुण जो बुद्धि होती है वो शास्त्र को पढ़ती है, सत्संग का श्रवण करती है, गुरु से प्रेम करती है, वहां से सीखती है कि किसने मेरे जीवन का कल्याण है, मानव जन्म बड़ा कीमती है। तो वो बुद्धि शास्त्र को, निर्णय को स्वीकार करके उसके अनुसार जीवन को बढ़ाती है और फिर आगे अपना विकास करती है। तो इसीलिए वो अगली बात क्या कर रहे हैं कृष्ण, कि भाई जब मन भी बिगड़ गया आपका, बुद्धि भी बिगड़ गई, तो संभलने का कोई रास्ता है आपके पास? वहां कह रहे हैं इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसः तु परा बुद्धि या बुद्धे परता तु सः। अब आपका सीक्वेंस बता रहे हैं शरीर का, कि शरीर में सबसे पहले क्या है, हमारी इंद्रियां, हम जानते हैं, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, जीभ से स्वाद ले रहे हैं, फिर पांचों ज्ञान इंद्रिया। तो इंद्रियाणि पराणि आहु, ये इंद्रियां इस देह से श्रेष्ठ है। देह के मुकाबले में इंद्रियां सूक्ष्म है और ये इसके मुकाबले में श्रेष्ठ भी, और इंद्रियों के मुकाबले में क्या है, मन श्रेष्ठ है, मन सूक्ष्म है। क्योंकि मन के अंदर संकल्प उठता है तब आप इस देह का उपयोग करते हो, मन के लिए आप देह का उपयोग करते हो और इंद्रियों से उन सुखों को पूर्ण करने की कोशिश करते हो, उनका अनुभव करते हो। तो उसके संस्कार कहां इकट्ठे हो गए, मन में ही इकट्ठे हो गए। तो कह रहे कि मन से भी सूक्ष्म और श्रेष्ठ कोई चीज है, तो कह रहे हैं कि इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसः तु परा बुद्धि, मन से भी श्रेष्ठ और सूक्ष्म बुद्धि है। क्यों? क्योंकि बुद्धि जानती है और बुद्धि निर्णय देती है। बुद्धि का निर्णय यदि ठीक है तो आप के अंदर जो इच्छा है वो ठीक ही, जो इच्छा होगी वही आप पूर्ण करोगे, जो इच्छा ठीक नहीं है उसको आप पूर्ण नहीं करोगे, उसको आप नेग्लेक्ट करोगे, उसको छोड़ दोगे, आप से बच जाओगे। लेकिन बुद्धि ये बात सीखेगी कहां से? तो आप जानते हो कि हम कहां से सीख रहे हैं, सत्संग से सीख रहे हैं, बात वाणी से सीख रहे हैं, कि आई कहां से वाणी है? तो कहते हैं कि या बुद्धे परता तो सा, बुद्धि से सूक्ष्म श्रेष्ठ वो स्वयं है। वो कौन? परमात्मा, वो आत्मा, वो ईश्वर। अब बताइए ये मेरी बॉडी के अंदर सीक्वेंस है, देह है, देह के साथ इंद्रियां हैं, इंद्रिय के साथ मन है, और जैसे सूक्ष्म की तरफ बढ़ रहे हैं वो चीजें श्रेष्ठ होती चली आ रही है। आप में से कोई नहीं कहेगा कि बुद्धि निकृष्ट सी है, मन अच्छा है, कोई नहीं कहेगा। अरे बुद्धि का निर्णय ही गलत हो गया तो सारी जिंदगी गलत रास्ते में चली जाएगी, सब जानते हैं इस बात को। तो गुरु यही बात कह रहा है कि तुझको मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म में तुम्हें शुद्ध बुद्धि करनी थी, तो शुद्ध बुद्धि कौन करेगा? गुरु ही तो करेगा। गुरु कौन सा? बाजारू गुरु नहीं करेंगे, जो ब्रह्म ऋषि है। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस हुए ब्रह्म ऋषि थे, दक्षिण में महर्षि रमण हुए ब्रह्म ऋषि थे, उत्तर में महात्मा मंगलराम हुए ब्रह्म ऋषि थे, ये वाणी प्रकट हुई। भारत ही ऐसा देश है जिसमें आज के युग में भी ब्रह्म ऋषि या धरती पर प्रकट होते हैं, ये ज्ञान देकर जाते हैं। तो ऐसे देश में जन्म लेकर मैं दुनिया की धूल फांकने के लिए बच्चों को भेज देता हूं, इस ज्ञान से उनको कट ऑफ कर देता हूं, उनको होश ही नहीं है। मेरे देश से ज्यादा अमीर देश पूरी दुनिया में कोई है नहीं। ये कौन सी अमीरी है? ये ज्ञान की अमीरी है। दुनिया के सारे शास्त्र यही लिखे गए, वैदिक काल से लेकर उससे भी पहले से शास्त्र मौजूद है, आज तक मौजूद। वेद मौजूद है, उपनिषद मौजूद है, गीता मौजूद है, गुरुवाणी मौजूद है, मंगलवाणी मौजूद है, इन सत्पुरुषों की बातें मौजूद है, उनके शिष्य मौजूद है, उनके वार्तालाप जो उन्होंने किए, जो उत्तर दिए वो लिखित में मौजूद है। इतना ज्ञान का भंडार इस भारत देश के अंदर है, यहां से बच्चों को हम भेज देते हैं, इस ज्ञान की हमारे लिए कोई कीमत ही नहीं। जो ज्ञान मेरी जिंदगी को डुबो रहा है, जिसने कई विश्व युद्ध करा दिया, अगला विषय की तैयारियां कर रहे हैं, उनकी बुद्धि कहां खड़ी हुई है? उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए हम बच्चों को भेजते हैं, तो हमारी बुद्धि कहां खड़ी हुई? ये अहंकारी बुद्धि है, ये होश वाली बुद्धि नहीं है, याद रखिए। इसलिए जो ठीक रास्ता है हमारा, मन बुद्धि और ईश्वर, ये तीनों इस देह के अंदर हुए। कृष्ण की बात याद रखें, अहम आत्मा को जाके, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं, है तदेशे अर्जुन की स्थिति, मैं तेरे हृदय में निवास करता हूं। महा जी भी ये बात करें, सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी हो के घट का पाठ होगा। तो घट का पाठ कौन सा है, ये तो बाद में बात होगी। तो इस देह के अंदर है, तूने उस पाठ को खोल, उसको द्वार को खोलना था, गुरु आज्ञा पर के अनुसार चलकर। तुझे होश ही नहीं है, अपनी देह की कीमत भी तुझको नहीं पता। पूरे ब्रह्मांड में सबसे बेशकीमती चीज कोई है तो ये मानव देह है, याद रखना। इसका मैंने ऐसा दुरुपयोग किया, ऐसा दुरुपयोग किया कि अपने घर वाले ही मुझसे परेशान है। इसीलिए एक साधारण विषय नहीं, मन बुद्धि और ईश्वर, ये ऐसा विषय है कि पूरी जिंदगी को पलट दे, ये तीनों एक संग है। मैं अर्थात बुद्धि मन के चक्कर में फंसकर जिंदगी, मानव जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने फंसना किसके चक्कर में था, गुरु के चक्कर में फंसना था, ईश्वर के चक्कर में फंसना था। वहां से मुझको अमृत मिलता, ईश्वर आनंद रूप है, ईश्वर ज्ञान रूप है, ईश्वर जीवन रूप है। मुझको ईश्वर का अंश कहा जाता ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर की मरण नहीं होती, जीव की मृत्यु नहीं होती, तो मैं उसका अंश हूं। चेतना ईश्वर में है, चेतना मुझ में भी है, जानता ईश्वर है, जानता मैं भी हूं। मैं नहीं जानता कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं जानता हूं। तो जानने की शक्ति है किसकी है, यही तो ईश्वर की शक्ति है, यही ईश्वर का अंश है जो जानता है। तो मैं अपने पिता को ही भूल गया, जिसका बेटा मैं हूं उसका अंशी, उस अंशी का अंश मैं हूं, उसको मैं भूल ही गया। तो यही दुर्बुद्धि है, यही कुबुद्धि है। इसलिए ये बुद्धि मन इंद्रियों के चक्कर में फंसकर जिंदगी खत्म कर देती है, मानव जन का होश ही नहीं आता, सारा मानव जन का इतना कीमती वक्त बर्बाद हो जाता है। इसलिए ये विज्ञान बड़ा कीमती है, इसको समझें।